गाथा, रूप वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं उपेंद्रनाथ अश्क की लिखी कहानी पहेली। रामदयाल पूरा बहुरूपिया था, भेष और आवाज बदलने में उसे कमाल हासिल था। कॉलेज में पढ़ता था तो वहां उसके अभिनय की धूम मची रहती थी। अब सिनेमा की दुनिया में आ गया था तो यहां भी उसकी हर तरफ चर्चा थी। कॉलेज से डिग्री लेते ही उसे बंबई की एक फिल्म कंपनी में अच्छी जगह मिल गई थी और अल्पकाल ही में उसकी गणना भारत के श्रेष्ठ अभिनेताओं में होने लगी थी। लोग उसके अभिनय को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। उसके पास प्रतिभा थी, कला थी और ख्याति के उच्च शिखर पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा भी। इसीलिए जिस पात्र की भूमिका में वो काम करता, अपने बहुरूप और अभिनय से वह बात पैदा कर देता था कि दर्शक अनायास ही वाह वाह कर उठते और फिर हफ्तों उसकी चर्चा कला के लोगों में हुआ करती। 2 महीने हुए उसकी शादी हुई थी। बंबई की एक निकटवर्ती बस्ती में छोटी सी एक कोठी किराए पर लेकर वह रहने लगा था। एक समय था कि वह बहुत निर्धन था, परंतु अब तो वह धन संपत्ति में खेलता था। रुपए पैसे की उसे क्या परवाह थी। उसका विवाह भी उच्च घराने में हुआ था, पत्नी भी सुंदर सुशिक्षित मिली थी। जिस प्रकार बादल सूखी धरती पर अमृत की वर्षा करके उसे तृप्त कर देता है, उसी प्रकार निर्धनता से सूखे हुए रामदयाल के हृदय को विधाता ने वैभव की वर्षा से सींच दिया था। संध्या का समय था। साये बढ़ते बढ़ते किसी भयानक देव की भांति संसार पर छा गए थे। रामदयाल लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। अभी तक कमरे में बिजली जली नहीं थी और वह किवाड़ के समीप कुर्सी पर रखे एक लेख को पढ़ने में निमग्न था। चपरासी ने बिजली का बटन दबाया। क्षण भर में रोशनी से कमरा जगमगा उठा। रामदयाल ने रुमाल से ऐनक को साफ किया और फिर लेख पर अपनी दृष्टि जमा दी। वह नवयुग का महिला अंक देख रहा था। अंक देखना तो उसने यूं ही शुरू किया था, परंतु एक लेख कुछ ऐसा रोचक था कि एक बार जो पढ़ना आरंभ किया तो समाप्त किए बिना जीना माना। लेख में किसी अभिनेता के अभिनय की विवेचना ना थी। छद्म वेश कला पर कोई नई बात भी नहीं लिखी गई थी। बस एक सीधा साधा लेख था जिसमें नारी स्वभाव पर एक नूतन दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया था। एक सर्वथा नई बात उसमें लिखी गई थी। उसमें लिखा था, स्त्री प्रेम की देवी है, वह अपने प्रिय के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सकती है, वह उसकी पूजा कर सकती है, पर यदि उसका प्रिय उसके प्रेम की अवहेलना करे, उसकी मोहब्बत को ठुकरा दे, तो अवसर मिलने पर वह अपने प्रेम की तृषा बुझाने के लिए किसी भी दूसरी चीज को ढूंढ लेती है, चाहे वह चल हो या अचल, सजीव हो या निर्जीव, यही प्रकृति का नियम है। रामदयाल उठा और गंभीर मुद्रा धारण किए हुए पुस्तकालय से बाहर निकल आया। सड़क रोशनी से नववधु की भांति सज रही थी। रामदयाल अपने हृदय की गति के समान धीरे धीरे चला जा रहा था। उसे देखकर कौन कह सकता था कि यह वही प्रसिद्ध अभिनेता है जो अपनी कला से भारत भर को चकित कर देता है। उर्मिला उसकी पत्नी अनुपम सुंदरी थी, कल्पना से बनी हुई सुंदर प्रतिमा सी। मीठे मादक स्वर के रूप में विधि ने उसे जादू दे डाला था। संगीत कला में उसने विशेष क्षमता प्राप्त कर ली थी और यह गुण सोने में सुगंध का काम कर रहा था। जब भी कभी वह अपनी कोमल उंगलियों को सितार के पर्दों पर रखती और कान उमेट कर तारों को छेड़ती तो सोए हुए उद्धार जाग उठते और कानों के रास्ते मिठास और मस्ती का एक समुद्र श्रोता की नस नस में व्याप्त होकर रह जाता। रामदयाल उस पर जी जान से मुग्ध था और वह भी उसे हृदय की समस्त शक्तियों से प्यार करती थी। दोनों को एक दूसरे पर गर्व था, किंतु यह सब कुछ स्थायी न हो सका। असार संसार में कोई वस्तु स्थायी हो भी कैसे सकती है। मनोमालिन्य की आंधी ने मोहब्बत के इस छोटे से पौधे को क्षण भर में बर्बाद कर दिया। उर्मिला नीचे ड्राइंग रूम में बैठी थी। वह रामदयाल की प्रतीक्षा कर रही थी। सामने के भवन में आज कोई युवक घूम रहा था। वह कौतूहलवश उसे भी देख रही थी। उसके कान सीढ़ियों की ओर लगे हुए थे, परंतु आंखें उस युवक को बेचैनी से घूमते देख रही। वह कोठी कई दिनों से खाली थी, परंतु अब कुछ दिन से इसे किसी ने किराए पर ले लिया था। उसने 2-3 बार किसी युवक को बिजली के प्रकाश में घूमते देखा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह बेचैन हो, जैसे आकुलता उसे बैठने ना देती हो। अंगीठी पर रखी हुई घड़ी ने टन टन करके 9 बजे। सामने के भवन में रोशनी बुझ गई। उर्मिला अपने आप को अकेली सी महसूस करने लगी। उसने सितार उठाया, उसकी कोमल उंगलियां उसके पर्दों पर थिरकने लगी, उसके अधर हिले और दूसरे ही क्षण एक करुणापूर्ण गीत वायुमंडल में गूंज उठा। सखी नैनन ते घन हारे, सखी इन नैनन से घन हारे। स्वर में दर्द था, लोच था और लय थी, सीने में प्रतीक्षा की आग थी। वह तन्मय हो गई, अपनी मधुर ध्वनि में खो गई और उसे यह भी मालूम ना हुआ कि रामदयाल कब आया और कब तक किवाड़ की ओट में खड़ा उसे देखता रहा। वह गाती गई, बेसुध होकर गाती गई। उसकी आंखें सितार पर जमी हुई थीं, उसके कान सितार के मादक स्वर में डूब गए थे। रामदयाल की भ्रकटी तन गई और वह चुपचाप मुड़ गया। खाने के कमरे में उसने दासी से खाना मंगाया और खाकर सोने चला गया। उर्मिला गाती रही, अपने दर्द भरे गीत को वायु के कड़कड़ में बसाती रही। देवता आया और चला गया, पुजारी उसकी पूजा ही में व्यस्त रहा। दूसरे दिन रामदयाल प्रातः ही घर से चला गया और बहुत रात गए घर लौटा। उर्मिला दौड़ी गई और गंगा सागर में पानी ले आई। रामदयाल के चेहरे से क्रोध टपक रहा था। आप इतनी देर कहाँ रहे? रामदयाल चुप। उर्मिला ने पानी का भरा हुआ गंगा सागर आगे रख दिया। घर में 2 दासियां तो थीं, परंतु पति की सेवा वह स्वयं किया करती थी। रामदयाल जब संध्या को घर आया करता तो वह उसका हाथ मुंह धुलाती, तश्तरी में कुछ खाने को लाती और स्टूडियो की खबरें पूछती। रामदयाल ने हाथ ना बढ़ाए, वह चुपचाप खड़ी उसकी गंभीर मुद्रा को देखती रही। उसका हृदय धड़कने लगा, बीसियों प्रकार की शंकाएं उसके मन में उठने लगी। उसने उन्हें बुलाने का इरादा किया, किंतु झड़क न दे या सोचकर चुप हो गई। आशा ने फिर गुदगुदी की, निराशा ने फिर दामन पकड़ लिया। मनुष्य के हृदय में जब संदेह हो जाता है तो निराशा हम दर्द की भांति समीप आ जाती है और आशा मरीचिका बनकर भाग जाती है। फिर भी उसने साहस करके पूछा, जी तो अच्छा है ना? चुप रहो स्वामी, मैं कहता हूं खामोश रहो। उर्मिला खड़ी की खड़ी रह गई। निराशा ने आशा को ठुकरा दिया और अब उसमें उठने का साहस भी ना रहा। उसे कल की घटना याद हो आई, परंतु साधारण सी बात पर इतना क्रोध, वह समझ ना सकी। उन्हें तो इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए था। नहीं नहीं, यह बात नहीं, उससे अवश्य कोई दूसरी अवज्ञा हो गई है। हो सकता है किसी से झगड़ पड़े हों अथवा कोई दूसरी घटना घटी हो। अशुभ की आशंका से उसका मन उद्विग्न हो उठा। उसके चरणों पर झुकते हुए उसने कहा, दासी से कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दे। रामदयाल ने पांव खींच लिए, उर्मिला मुंह के बल गिरी, वह सोने चला गया। उर्मिला बहुत देर तक उसी तरह बैठी रही और फिर लेट कर धरती में मुंह छिपा कर आंसू बहाने लगी। उसे विश्वास ना होता था कि उसके पति ने इतनी सी बात पर उसे नजरों से गिरा दिया। रामदयाल के प्रति उसके मन में कई प्रकार के विचार उठने लगे। उसने उन्हें आज तक कभी शिकायत का मौका ना दिया था। उसने उनकी साधारण सी बात को भी सिर आंखों पर लिया था, फिर यह निरादर क्यों? उसे शंका होने लगी, कोई अभिनेत्री उनके जीवन वृक्ष को विष से सींच रही है। किंतु दूसरे ही क्षण अपने इन विचारों पर उसे घृणा हुई। ग्लानी से उसका सिर झुक गया। रामदयाल चाहे किसी के मुंह में फंस जाए, परंतु उर्मिला के लिए ऐसा सोचना भी पाप है। तो फिर वह अपने पति से इस अनमयनस्कता का कारण ही क्यों ना पूछ ले? क्या उसे इस बात का भी अधिकार नहीं? वह सधर्मिणी नहीं क्या? अर्धांगिनी नहीं क्या? यह सोचकर वह उठी, उसके शरीर में स्फूर्ति का संचार हो आया। वह जाएगी, अपने पति से इस क्रोध का कारण पूछ कर रहेगी और उस समय तक ना छोड़ेगी जब तक वे उसे सब कुछ ना बता दें या अपनी भुजाओं में भींच कर या ना कह दें, मैं तो हंसी कर रहा था। उसके मुख पर दृढ़ संकल्प के चिन्ह प्रस्फुटित हो गए। वह उठी और धीरे धीरे रामदयाल के कमरे में दाखिल हुई। वह लेटा हुआ था, उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कुराहट खेल रही थी। अव्यक्त वेदना की अथवा गुप्त उल्लास की, कौन जाने। उर्मिला के आते ही वह उठ बैठा। उसने कड़क कर कहा, मेरे कमरे से निकल जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे तंग मत करो। क्या अपराध क्या है? मैं कहता हूं चली जाओ। उर्मिला खड़ी की खड़ी रह गई, जैसे किसी जादूगरनी ने उसके सिर पर जादू की छड़ी फेर दी हो। वह स्फूर्ति और संकल्प जो कुछ देर पहले उसके मन में पैदा हुए थे, सब हवा हो गए। इच्छा होने पर भी वह दोबारा ना पूछ सकी। उदासी का कारण पूछना, उस अकारण क्रोध का गिला करना, अपने कसूर की माफी मांगना, सब कुछ भूल गई। कल्पनाओं के भव्य प्रसाद पल भर में धाराशायी हो गए। वह चुपचाप वापस चली आई और सारी रात गीले बिस्तर पर सोए हुए मनुष्य की भांति करवटें बदलती रही। नींद न जाने कहां उड़ गई थी। समय के पंख लगाकर दिन उड़ते गए। रामदयाल अब घर में बहुत कमाता था। उर्मिला को सेवा के लिए दो दासियों में एक और की वृद्धि हो गई थी। वह उनसे तंग आ गई थी। वह सेवा की भूखी ना थी, मोहब्बत की भूखी थी, और मोहब्बत के फूल से उसकी जीवन वाटिका सर्वथा शून्य थी। बरसात के बादल आकाश पर घिरे हुए थे। ठंडी हवा साकी की चाल चल रही थी। बाहर किसी जगह पर पपीहा रह रहकर कूक उठता था। वायु का एक झोंका अंदर आया। उर्मिला के हृदय में उल्लास के बदले अवसाद की एक लहर दौड़ गई। हृदय के गहराइयों से एक लंबी सांस निकल गई। उसने सितार उठाया और विरह का एक गीत गाने लगी। उसकी आवाज में दर्द था, गम था और जलन थी। वायुमंडल उसके गीत से झंकृत होकर रह गया। अपने गीत की तन्मयता में वह बाह्य संसार को भूल गई। रात की नीरवता में उसका गीत वायु के कणकण में बस गया। सहसा सामने के भवन से जैसे किसी ने सितार की आवाज के उत्तर में गाना प्रारंभ कर दिया। पिया बिन चैन कहां, मन को राग क्या था। किसी ने उर्मिला का दिल चीर कर सामने रख दिया। वह अपना गाना भूल गई और तन्मय होकर सुनने लगी। क्या आवाज थी, कैसा जादू था। रूह खींची चली आती थी। एक महीने से वहां कोई सितार बजाया करता था, किंतु उर्मिला ने कभी उस ओर ध्यान ना दिया था। आज न जाने क्यों उसका हृदय अनायास ही गीत की ओर आकर्षित हुआ जा रहा था। इच्छा हुई खिड़की में जाकर बैठ जाए, परंतु फिर झड़क गई, उसी तरह जैसे कोई नया चोर चोरी करने से पहले हिचकिचाता है। वह खिड़की से झांकने के लिए उठी। उसे अपने पति का ध्यान आया। वह फिर बैठ गई। उसने सितार को उठाया और फिर रख दिया कि न जाने गाने वाला यह ना समझ ले कि उसके गीत का उत्तर दिया जा रहा है। उठकर उसने एक पुस्तक ले ली और पढ़ना आरंभ कर दिया, परंतु पढ़ने में उसका जी न लगा। उसे हर पंक्ति में यही अक्षर लिखे हुए दिखाई दिए, पिया बिन चैन कहां मन को, पिया बिन चैन कहां मन को। उठकर उसने पुस्तक को फेंक दिया और आराम कुर्सी पर लेट गई। गाने वाला अब भी गा रहा था और गीत उसकी एक एक नस में बसता चला जा रहा था। विवश होकर वह उठी। उसने सितार को उठाया, तारों में झंकार पैदा हुई, तारों पर उंगलियां थिरकने लगी और वह धीरे धीरे गाने लगी। शनै शनै उसका स्वर ऊंचा होता गया, यहां तक कि वह बेसुध होकर पूरी आवाज से गा उठी, पिया बिन चैन कहां मन को। गीत समाप्त हो गया। वायुमंडल के कण कण पर छाया हुआ जादू टूट गया। वह जल्दी से उठकर खिड़की में चली गई। उसने देखा युवक सितार पर हाथ रखे उसका गाना सुन रहा है। गाथा में अभी आप सुन रहे थे उपेंद्रनाथ अश्क की लिखी कहानी पहेली का पहला भाग।